अरुण को भी देखा, राधा जी को भी देखा, कृष्ण को भी देखा, तब तक मूर्छित नहीं हुए थे। अब इन दोनों को महाभाव और हर्षराज कृष्ण को दोनों का एक साथ में देखा। देखी रामानंद भैया आनंद मूर्छित, भाव की तरंगे उनकी उछलने लगी और इतनी जोर से तरंगे उठी कि अब धैर्य नहीं धारण कर सके और मूर्छित होकर के वहीं पर। हम लोग को तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ अनुभूति भी नहीं है, न तो कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, न राधा जी, न कोई भाव। अभी साधन भजन ही हमारा नहीं। महाप्रभु एक लकड़ी की मूर्ति, आंख गोल गोल बना दिया गया और हाथ भी नहीं है पूरे। पूरी में देखते हैं और कहते क्या है, सखात ब्रजेंद्र नंदन प्रतिमान हो, प्रतिमा आपने यदि इसको ऐसा देखते ना यहाँ पर विग्रह छापी तो देखने मात्र से उसके सबसे दौड़ पड़ते हैं, जैसे कि वहां पर हम लोग इसी चीज को देखते हैं। सनातन गोस्वामी जी के वही मदन मोहन का रोगी में, रूप गोस्वामी के गोविंद जी वहीं पर हैं जो उस समय थे। उस समय में राजा की स्त्री से कहा, मैं तुम्हारी नख बेसर पहनना चाहती हूं। सनातन गोस्वामी से उनके मदन मोहन जी ने कहा, अरे रोटी के साथ में मुझको थोड़ा सा नमक भी तो दिया कर। हम लोगों से कभी मानते हैं, निकालते हैं, हम लोग उसमें देखते हैं। ये भक्ति के साधन में से देखा, जब ऐसी भक्ति होगी तो ये साक्षात ठाकुर जी हैं। जगन्नाथ ने साक्षात ठाकुर दिया, किंतु हम लोगों को काष्ठमय विग्रह के रूप में वो उनको हम देखते हैं, ठाकुर जी के रूप में नहीं देखते। अब इनके अंगों को स्पर्श करेंगे तो कैसे मालूम होगा,
कठोर।
एक बार मैं गया दर्शन करने के लिए तो हमारी लालसा हुई, उनके चरण को छूंगा, दुर्बुद्धि आई तो मैंने अपने पंडा जी से कहा, ये सब तो ले गए तो वो निकट में छोड़ दिया वहां तक जाने के। तो हमने अपने हाथ में 10 रुपए का नोट एक ले लिया, ये चरणों को छू करके वहां रखे। चरणों को छूने के लिए गए तो देखा क्या, जी हमारा हाथ पकड़ करके डोनेट दम मोड़ करके वो नोट तो छीन लिया। इतने मोटे मोटे, इतने लंबे चौड़े, मेरी तो श्रद्धा तो सब नष्ट हो। इस समय ठाकुर जी को लकड़ी के रूप में कठोर पाया, कहां कुमलत और कहां क्या, मन बहुत खराब हो। मैंने शांत पकड़ा जी, अब निकट से कभी नहीं ठाकुर जी को देखने की चिंता। सब लोगों की ऐसी ही दशा, जिनको प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, साधन नहीं है, वैसे नेत्र नहीं है। महाप्रभु निकट तो जा ही नहीं पाते थे, बहुत दूर से एक पत्थर के स्तंभ पर हाथ रखते भाव में विद्रोह हो जाते और वो पत्थर गल जाते। जिसके ऊपर में पत्थर पर खड़े होते थे वो पत्थर में उनके दाग पड़े, वो भी गल जाता। यदि प्रणाम करते महाप्रभु जी तो पत्थर पिघल करके ऐसे ऐसे हो जाता, उसको प्रणाम कर रहे हैं, वो सब दाग महाप्रभु जी के। भक्त भी ऐसे उनके, हम लोगों को भक्ति नहीं है वैसे, हम लोगों को तो सत्मय संसारिक चिंताएं लगी रहती, गुरु के ऊपर में उतना विश्वास भी नहीं है। किसका किसका हम लोगों में से गुरु कर्ण हुआ है, ये भी संदेह की बात है। अनुष्ठानिक गुरु एक होता और एक होता है यथार्थ विद्वत रूढ़ी से गुरु। हम लोग का इनमें से कितने आदमियों का विद्वत रूढ़ी से मैंने यथार्थ रूप में गुरु स्व हुआ है, गुरु को हमने, गुरु जी ने हमको मंत्र दिया है, अनुष्ठानिक रूप में दिया ने वैसे दिया, अनुष्ठानिक प्रधान नहीं है। उनकी शिक्षाओं को, गुरु की शिक्षाओं को ग्रहण करके हृदय को अपने श्रद्धा से लेकर के कहां प्रेम तक पहुंचाएंगे, यदि तब इन चीजों की अनुभूति हो सकती है। गुरु का दोष नहीं, यदि गुरु वैसे सदगुरु हैं कि उनसे लेने का पात्र भी तो चाहिए, और पात्र के लिए तैयार होकर के यहां गुरु ही ऐसे नहीं है तो फिर क्या होगा। दोनों का सुपात्र होना जरूरी है, जैसा गुरु होगा शिष्य भी वैसा ही होगा, साधन भजन भी वैसे ठीक रूप में होगा, तब तो होगा। क्योंकि दोनों चीजें नहीं मिलेंगी तो अनुष्ठानिक दीक्षा हो जाए। हम समझेंगे हम तो शिष्य हो गए, किनके शिष्य? पूज्यपाद स्वामी महाराज जी के शिष्य, उनके शिष्य कहेंगे। किंतु होगा क्या, उनसे पूछा कि मंत्र तुमको क्या दिया, तो मंत्र पूरा याद में क्या कुछ दिया था, हरे कृष्ण भी शुद्ध उनको याद नहीं गए, हरे कृष्ण हरे हरे पूरा वो भी नहीं कह सकते। आखिर तुम उनके गुरु जी का नाम क्या है तो क्या कहेंगे, ये तो हमको किसी ने बतलाया नहीं कि उनके गुरु जी का नाम क्या। तो भक्ति में गुरु जी का नाम का लेने की क्या जरूरत, अरे तुम अपने बाप बाप दादे का नाम याद रखते हो और ये गुरु जी का नाम, उनका स्मरण किसा भिक्षा नहीं करेगा तो तुम्हें क्या। इसलिए जब साधन करते 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 हमारी निष्ठा रुचि आसक्ति और अंत में वो भाव जब यहाँ पर प्रकट होगा भाई, सब ठाकुर जी को वैसे देख सकते, गुरु जी के प्रति वैसा आदर होगा, वैष्णव के प्रति आदर होगा, भक्ति के प्रति सब ऐसा। ये तो विशाखा जी है ना, इसलिए ये पात्र उसके देखने, इसलिए महाप्रभु जी को उन्होंने समझ लिया। नवद्वीप वाले लोग वाराणसी के लोग महाप्रभु को पहचान सके नहीं, पर साधारण एक मनुष्य के रूप में उन लोगों ने देखा। अभी भी बड़े बड़े विद्वान लोग महाप्रभु के विचारों को तो लेते हैं प्रवचन के समय, किंतु उनको भक्त से अधिक नहीं मानते। महाप्रभु जी के और भक्त तभी नहीं थे, ये इतना सुंदर ये भाव कितना ये दे रहे हैं। अतः तो राधा जी और कृष्ण के लिए मिलित समूह है, राधा जी का रसराज भाव और राधा जी का महाभाव, ये दोनों मिल करके ये चैतन्य महाभाव। आज तक ऐसा कोई दूसरा अवतारी नहीं, इसको सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, साधन भट्टाचार्य जी, प्रकाशानंद सरस्वती और पूरी वाले साधन भट्टाचार्य, ये सब लोग बड़े बड़े विद्वान रति वैष्णव उनको इस रूप में अनुभव किया महाप्रभु जी को। यदि राज कविराज की गोस्वामी की कृपा नहीं होती तो हम लोग इन चीजों को समझ नहीं सकते, कहना सुनने में आता। प्रभु सारे हस्त स्पर्शी करे लक्षितम सन्यासी रवेश दे के बीच में कल्याण, जैसे सनातन गोस्वामी वृद्धावस्था में गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, अत्यंत जड़ वृद्ध हो गए हैं और कुछ खाते पीते तो थे नहीं, दुबले पतले। जब यहां से वृंदावन से जाते गोवर्धन की पूरी परिक्रमा करते और परिक्रमा करके मथुरा में दोपहर में आकर के माधुपुरी थोड़ा सा कर ले, वो भी बिना नमक की रोटी सूखी, और लेकर के चले जाते वृंदावन में और वहां जो कुछ मिलता ठाकुर जी को मनी मन में भोग समर्पण करते और उसको ग्रहण करते। और जरक वृद्ध जब हो गए तो वहीं पर गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव के पास में रहने लगे, यहां नहीं लौटते थे और वहां रह करके उसकी परिक्रमा करते। उसमें भी जब नहीं ऊंचे हो सका दोपहर में धूप में बेचारे परिक्रमा दे रहे थे, बस भूख से मूर्छित हो गए, मैं किस लिए मूर्छित हो, बस मूर्छित हो गए इतना ही समय। मैं तो समझता हूं कि भूख से मूर्छित नहीं हूं, जरूर कुछ कृष्ण की लीलाओं का दर्शन वहां पर किया होगा, अपनी भावना के अनुसार में उसको देखकर के मूर्छित हो गए। मूर्छित हो जाने पर कृष्ण और बलदेव गोचार कर रहे थे, बस घट आ गए और कृष्ण ने उनके सिर को उठा करके और अपनी गोदी में रख लिया और अपनी ऐसी छाया कर दी और प्रेम से उनके ऊपर में हाथ चढ़ाया। और बलदेव प्रभु जी अपने पीताम्बर से देखो कृष्ण और बलदेव स्वयं आकर के उनकी सेवा कर रहे हैं अपनी भक्ति। कृष्ण के कोमल स्पर्श से उनको ज्ञान हुआ, बोध आया। आज आप जो दृश्य देखा ना उनको, ये हमें ये हवा कर रहे हैं और ऐसा कोमल स्पर्श दे रहे हैं, आनंद में और मुक्ति हो रही है। उस आनंद को सह न सके फिर इनको सिजाती पैर वाली, अपने पैर का था उसमें, गैया के चरण का था उसमें, अपनी बनमाला का था और बंसी का झाप देकर इसी की रोड परिक्रमा का मतलब। यहाँ पर वो मूर्छित हो गए राय रामन। रसराज और महाभारत दोनों का मिलित रूप देख करके हम लोग कभी कभी आसक्ति वाले पुरुष को भी, जिनमें आसक्ति हो जाती है या थोड़ा सा भाव का भाव भी हो जाता है, यदि देखें ना तो उनके भाव हमारे अंदर में आ जाएंगे और हम लोग भी वैसे स्थिति हो सकते हैं जैसे बिंदु मंगल जी आए वृंदावन की। कैसी भावना के साथ रूप सनातन जी कैसी भावना लेकर उस समय में हम लोगों का यदि सौभाग्य होता उनके दर्शन, जब रूप सनातन जी हाथ उठा करके हा राधे आप कहाँ हैं, हे विशाखा जी आप कहाँ हैं, हे वृंदावन धाम आप हमारे ऊपर कृपा करें, कृष्ण मुझे कहाँ मिलेंगे, और रोते 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 एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं, ऐसी स्थिति हो। उस समय में ये सिंह तक भी अपने घुटने टेक करके उनको प्रणाम कर रहे होंगे जैसे राधा कुंड में देख सकते हैं, ऐसी स्थिति हो। इस तरह से वो ब्रज में इन भावों को जो प्रकाशनों का सौभाग्य नहीं सौभाग्य था अभी थोड़ी नहीं हुए, ऐसे ऐसे भक्तों का दर्शन बहुत सुंदर। भगवान मिल जाएंगे सहजी, किंतु ऐसे प्रेमी भक्तों का मिलना बहुत ही कठिन है, विशेष काल के इस कलयुग में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा न योग न तपस्या न दान न इज्ञा न अर्चन कोई भी चीज कलयुग को उद्धार नहीं कर सकती, कलयुगी जीवों को बस केवल महाशक्तिशाली भगवान नाम, वो भी कृष्ण नाम महाशक्तिशाली, और यह प्रेम जगत के लोगों को उद्धार। महाप्रभु जी ने यह विशेषता दी साधारण जीवों के लिए अधिक तर्क और शास्त्र युक्ति इत्यादि का अवलंबन नहीं किया, सरल सहज रूप में प्रेम को देने की उन्होंने चेष्टा की। जैसे कृष्ण ने अपना स्पर्श यदि प्रकाश नहीं कर सके उस समय अगासुर बकासुर को सहज रूप में उनको उद्धार कर दिया, ऐसे चैतन्य महाप्रभु बिना अर्थ शस्त्र बिना युक्ति तर्क साधारण रूप में ही और जगत के जीवों के हृदय में नाम और प्रेम। इसलिए इसमें इस कलियुग में कल्कि अवतार नहीं होगा, इस युग में महाप्रभु का यह प्रभाव और बढ़ता जाएगा। 400 वर्ष में जब महाप्रभु आए थे बंगाल से कृष्ण का आंदोलन आरंभ किया, धीरे 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 ये वृंदावन में और बंगाल में टिक रहा, वो भी मायापुर के पास में, धीरे धीरे रूप सनातन और इसके बाद में तीन गोस्वामी श्यामानंद जी नरोत्तम ठाकुर और श्रीनिवास, इन लोगों ने बंगाल में और फिर उधर आसाम में मणिपुर में इधर उड़ीसा में प्रचार किया। इसके बाद उनके और सब दूसरे गोस्वामी आए भारतवर्ष में, जहां जहां गए वहां पर थोड़ा थोड़ा प्रचार भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी और भक्ति विनोद ठाकुर जी आए, इन्होंने व्यापक रूप में इसका प्रचार आरंभ किया। पहले तो लोग एरोप्लेन में नहीं चलते थे, रेलगाड़ी में नहीं चढ़ते थे,
समुद्र को नहीं पार करते,
जूता तक नहीं पड़ते थे पहनते और समुद्र को भी पार नहीं करते। उन्होंने कहा प्रभु जी की सेवा के लिए सारे विज्ञान को हम भक्ति की सेवा में लगाएंगे, उनके नाम प्रचार में लाएंगे। जरूरत है समुद्र को 10 बार 20 बार 100 बार पार करें। अपने विचारों का सर्व जगह ही प्रचार करें। तब इन लोगों ने आज भारतवर्ष क्या समस्त विश्व में ये लोग धीरे 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 महाप्रभु जी नहीं आते और अंत में ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी और हम लोग के गुरु पाठ पद्म इत्यादि सब नहीं आते तो इतना व्यापक रूप में सर्वत्र प्रचार नहीं होता। इसलिए कलयुग जितना भयंकर है ये औषधि भी महौषधि है। ये हरिनाम और कुछ भी ना करें कोई भी धर्म नहीं होता, बस हरे नाम बस कर और भगवान की कथा होता धीरे धीरे चरित्र बदल जाएगा। भगवान के चरण में भक्ति हो महाप्रभु जी ने उनको स्पर्श किया। तीन प्रकार की दया भगवान करते हैं, अपना तत्व ज्ञान जीवों में देते हैं। एक तो दृष्टि शक्ति से जिसको तरफ में देखा ना बस शक्ति का संचार कर दिया हृदय में शक्ति होगी ऊपर से मालूम नहीं होगा। और दूसरा बाकी बातचीत मैंने कहा उनको उपदेश किया और उनको तत्व ज्ञान दे दिया। और तीसरा है
आलोक जो
आलोक
बातचीत हार्दिक आलोक
उनको एकदम दर्शन देकर के ही स्पष्ट कर दिया। यहां पर महाप्रभु जी उनकी मूर्छा अत्यंत धनी हुई थी अत्यंत धनी इसलिए अपने हाथों का कोमल स्पर्श देकर के और उनकी मूर्छा को दी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने वर्णन किया है महाप्रभु जी वदान्य है। वदान्य माने क्या महावदान्य इसलिए महावदान्य है ये। और अवतार ने जो कुछ दिया विशेष करके शत्रुओं को मारा अगासुर बकासुर इत्यादि को किंतु वो लोग जीवित काल में ये न समझ सके ये इनकी कृपा हमारे ऊपर में हुई है कोई नहीं समझा। किंतु इस अवतार में जिस पर महाप्रभु नित्यानंद जी ने कृपा की ना किसी को मारा नहीं इसलिए पीछे उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया अनुभव किया जलाई मधाई उससे चित्त को एकदम शोधित कर मारने की जरूरत नहीं पड़ी। संशोधन जो जो सामने आए सबको महाप्रेम पे अंत इसलिए पीछे से भी वो लोग समझ सके कि महाप्रेम की हमारे ऊपर नहीं आ रहा। तो पहले कृष्ण दर्शन देते हैं या दर्शन के पहले वो अपने वंचित ध्वनि सुनाएंगे सुस्वा सुनते ही आदमी भी मूर्छित हो जाएगा। फिर इसके बाद में उसको उठाएंगे अपने सुकुमार हाथों से स्पर्श करके उठा देंगे फिर उनको उसको देखे ही मूर्छित हो जाएगा। फिर उसको अपने बुला करके अरे प्रेमी भक्तों उठो मैं तुम्हें स्पर्श कर रहा हूं उससे बातचीत करेंगे तुम क्यों मूर्छित हो गया हमें पर सुनते ही वो फिर इसी तरह से कितनी बार वो
सुगंध
अपने सुगंध को दे करके उसको फिर मूर्छित से फिर उठा ले। महाप्रभु जी कहते हैं एक साथ में शक्ति अपना रूप अपना गुण अपना सुस्वर बंसी ये सब दिखलाएंगे और उनको बेहोश नहीं होने देंगे ऐसी ये महाप्रभु जी की इसलिए महावदान। और कृष्ण प्रेम कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं दान कर कृष्ण ही अपने प्रेम को दान करने वाले वो भी महाप्रभु के रूप में इसलिए चैतन्य महाप्रभु महावदान है। महाप्रभु जी ने उनको छू दिया और स्पर्श करने के साथ ही में जो कोमल और सुगंधित उनका हाथ लगा पर झट उठ करके बैठ गए। संन्यासी वेश के बीच में थे अब वो जो दृश्य था वो तो अंतर्हित हो गया ओझल हो गया। उन्होंने देखा था पहले अभी हर्षराज और महाभाव दोनों को एक जगह देखा था अतः सुंदर कृष्ण का किशोर रूप बंसी बजाते हुए और उधर राधिका जी को देखा अब दोनों को फिर मेघ एक साथ संयुक्त होकर के देखा उसी समय में मूर्छित हो गए। फिर देखते हैं क्या सन्यासी आलिंगन कर प्रभु कैलय स्वादन तुम्हारा दिन रूप ना देखे अन्नजन। मैं तुम्हारे अंदर में ऐसे भाव हूँ, आज तक इस रूप को किसी दूसरे ने नहीं देखा, महाप्रभु के सन्यासी रूप को भी देखा है और कृष्ण का भी दर्शन कोई कर सकता है या किया हो, किंतु दोनों का मिला हुआ रूप आज तक किसी ने नहीं देखा। आज तक तुमने जो सबसे पहले देखा मोर तत्कलिया रस तुम्हार गोचरे अतएव रूप दिखाई न तुम्हारे गौरंग नहीं मोर राधांग स्पर्शन न स्पर्शन भूपेंद्र सूत बिना ती होना स्पर्श अन्न जन। कहते हैं कि मेरा यह जो लीला तत्व है तुम्हारा तृप्त कोई ऐसा पात्र नहीं जो कि इस चीज को समझे और दर्शन कर मैंने तुमको दिखलाया। ये क्या दिखलाया? गौर अंग नहीं मोर, मेरा जो अंग है ये गौ वर्ण नहीं है सन्यासी के रूप में, ये तुम गौर देख रहे, ये मेरी प्रभा नहीं अंग ज्योति नहीं है, बल्कि मोर राधा अंग स्पर्शन गोपेंद्र, ये राधा जी के अंग के स्पर्श करने से ये मेरी कृष्ण की ये अंग कांति और भावना हुई राधा जी के स्पर्श से। राधा जी के अंग को कोई दूसरा नहीं स्पर्श कर सकता, कोई नहीं कर सकता, उन जोग माया उनकी सब प्रकार से रक्षा करती है। राधा जी मेघ को जब देखती हैं वृंदावन के दीदार में, तो मेघ को भी शांत सुंदर समझकर और उनसे मिलने की आकांक्षा करती हैं। कभी कभी तमाल वृक्ष को देखा और तमाल वृक्ष को कृष्ण समझकर और छठ उनका आलिंगन करती हैं, श्याम सुंदर मिल गए उनसे बातचीत करेगी। कभी कभी अपने ये केस जो काले हैं इनको देख करके भी कृष्ण की स्मृति उनकी जरूरत है। किंतु उद्धव जी ब्रज में आए कृष्ण जैसे देखने में, कृष्ण की जितनी लंबाई जैसे अंग के अंग सुंदर है, उद्धव जी की कृष्ण के ही समान है। कृष्ण ने अपने वस्त्रों को पहना दिए हैं, श्याम रूप भी है और श्याम के समस्त अलंकार भी धारण कर रखे, अपना पीतांबर उनको पहना दिया प्रसाद, अपनी प्रसादी माला उनको दे दी, अपने कपड़े दे दिए, सब कुछ दे दिया और अपना रथ भी दे दिया, उसी पर बैठा करके वृंदावन में दे दिया। उद्धव जी ब्रज में गए, गोपियों ने इनको देखा, देखा जी श्याम सुंदर ही आ रहे हैं, श्याम सुंदर जैसे
श्याम बटे किंतु श्याम नॉट,
बंगला में है, श्याम बटे किंतु श्याम नॉट, श्याम है किंतु श्याम नहीं है, रंग से श्याम देखने में श्याम जैसा है किंतु श्याम अर्थात कृष्ण श्याम ये नहीं। देख करके भाव में मग्न हो रही हैं और कृष्ण के दूत रूप में एक भावने से बातचीत करने लग गए और उद्धव जी देख करके दंग रह गए, होश में नहीं रहे। उनको आलिंगन नहीं किया, उनसे छेड़ा भी नहीं, पूछा कि नहीं उद्धव तुम कौन है, कुछ भी पूछा ही नहीं, बल्कि दूसरी गोपियां ने कुछ पूछा। गोपी ने कहा कि तुम मथुरा से आए हो, उद्धव जी ने कैसे समझ लिया कि मैं मथुरा से आया, तुम जरूर मथुरा से, अच्छा तुम श्याम सुंदर के निकट से आया है, तो ये आपको कैसे मालूम हो गया? अरे हमको मालूम हो गया, कैसे मालूम हो गया? मालूम हुआ इसलिए आंखों से हम नहीं देख रहे, हमारी नाके कभी भूल नहीं कर सकती, क्या नहीं भूल कर सकते, श्याम सुंदर का गंध तुम्हारे अंगों में, ये क्यों? उनके वस्त्रों से और उनकी मालिका से श्याम सुंदर का अंगों का गंध उसमें लग गया और तुम उसको पहन करके आया है, तो वो श्याम सुंदर तो दूसरे को वो फूलमाला और अपने वस्त्र देने में किसको देंगे, जो अपना घनिष्ठ मित्र बंधु होगा, तुम जरूर उसी श्याम के संपर्क से आए। एक बात, किसे कह रही है? वो भौरे से कह रही है। उद्धव को देखा दूसरी गोपियों ने उत्प्रेक्षा करके उनसे ये सारी उद्धव समझ रहे हैं, राज्य बड़े अच्छे रूप में आए, बड़े सोने जैसे कपड़े तपड़े धारण करके आया है, काम ब्रज में आया ना, तो कृष्ण की मैया को दिखलाने के लिए आया, ये हमारा लड़का अब मथुरा का द्वारका का राजा होगा, ये चीज को दिखलाने के लिए तू आया, ये उनका दूध ही इतना सोने के रथ में चढ़ करके आ सकता है और इतना वैभव कैसा, तो कृष्ण के इसलिए हमारा बेटा कहीं आता जाता नहीं है मैया के बाप में, जो अभी गैया चराते हैं जिनका नाम गोप है उनके पास में हमारा बेटा माने वो कैसे आएगा, बोला जाता है। जैसे कहानी कहता हूँ मैं, कहानी नहीं सचमुच की बात, यही पर मथुरा में कोई कोई जज थे, उनका बाप था गांव का गमारू आदमी, चमरुआ जूता पहनकर और घुटने के ऊपर तक कपड़े पहन करके एक लड़किया लेकर के बेचारा अपने बेटे के पास में मथुरा में आया, पता लगा कि घर में वो नहीं है, वो तो वहां पर बैठा है कचहरी में है, तो पूछते पूछते अपने बेटे का परिचय देते हुए वो वहां पर गया, तो वहां पर एकदम कोर्ट में लोगों ने उसको मना किया मत जा, तभी वो माना नहीं, देखा जिनसे बेटा वहां पर बैठा हुआ है, सोचा जब बेटे को आज इतना बड़ा अफसर हो गया प्यार करूंगा, तो वो जब गया तो वो बड़े बड़े अफसरों के साथ में बातचीत कर रहे थे, ये निर्धारण वहां पर पहुंच गया और बेटा बेटा कहने लगा, तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो मजबूत जूता पहना हुआ व्यवहार फटी हुई और ये ऐसे कपड़े बदलते, ये कौन यहाँ आ गया, तो उनसे पूछा ये कौन है, तो मैं ये दिस इज माई गार्डन, मेरा नौ पर है, तो वो समझ गया उसने कहा कि नहीं मैं इसका नौकर नहीं, इसकी मैया का नौकर हूँ और ये कह करके तो ऐसे लोगों को लज्जा आती है ना, तो वैसे ही गोपियां ऐसे समझ लिए कृष्ण को, ऐसे अपना परिचय देने में इनको लज्जा होती है, इसलिए नहीं आ करके अपने दुख को इस रूप में भेज दिया। उद्धव जी कहते हैं कि पृथ्वी यदि फट जाती ना तो मैं इसके अंदर में समा जाता, ये लज्जा से मुख दिखलाने लायक मैं नहीं रहा। गोपियां ऐसे पैसे उनको बना रही थी, तो यहां पर वो जो कृष्ण का भाव, वो कृष्ण साक्षात यहां पर राधा जी के साथ में ही यहां पर पकड़ी, जब कृष्ण की ऐसी ही लीला में विशाखा जी को कोई आश्चर्य नहीं, किंतु आश्चर्य इस रूप में, इसलिए महाप्रभु जी का भाव और भी बहुत ऊंचा है, इसलिए महाप्रभु को सोचने के लिए समझने के लिए ऐसी आंखें चाहिए, ऐसा भाव चाहिए भाई, तब हम लोग समझ सकते हैं, अन्यथा महाप्रभु को हम लोग नहीं, उनकी लीलाओं को भी नहीं समझ सकते। पहले तो ये समझिए जो निष्ठा किसको कहते हैं, रुचि किसको कहते हैं, ये पहले समझें, तब महाप्रभु जी को महाभाव की अवस्था में यदि कोई जाए किसी जन्म में जन्म जन्मांतरों में सब कुछ, ये साधारण काम है। आप लोगों का परम सौभाग्य प्रतिदिन किसी न किसी रूप में महाप्रभु जी की लीलाओं का, राधा कृष्ण की ऐसी प्रेम में लीलाओं का श्रवण आप लोग, ये बहुत सौभाग्य की बात है। महाप्रभु जी ने उनको चेतन कराया और बोले तुम्हारे बिना ऐसा हमारा रूप आज तक किसी ने भी न देखा न उपलब्धि किया, आप लोग श्रवण के द्वारा ही जितना सुन रहे हैं ये हम लोगों का आप लोगों का परम सौभाग्य। गौरंग नहीं वो हमारा अंग गौर नहीं, गौरंग नहीं है, ये तो राधिका जी का है, वो तो मेरे ऊपर में प्रतिफलित, उन्होंने हमारे समस्त अंगों को अपने अंगों से ढक करके भाव को भी अपना हमारे अंदर में संक्रमित कर दिया, उनका किचन में राधा जी का भाव उनकी अंग शांति और एक संपन्न होकर के वही राधा जी के रूप में ही हूं। सबे तार भावी करी आत्मन सबे निज माधुर्य करी आस्वादन, मैं तो इसीलिए राधा जी का भाव उनकी अंग शांति से होकर के कृष्ण के इन सुंदर भावों को माधुर्य को मैं आस्वादन करता हूं। तुम्हार छाई अमार किचू गुप्त नहीं करना, तुम्हारे यहाँ हमारा मैंने चोरी करने की चेष्टा की, चलाकी करने की चेष्टा की, किंतु भक्तों के से गुस्सित थी। भगवान बड़े चतुर हैं ये बात ठीक है, बहुत चतुर बुद्धिमान, किंतु यशोदा के सामने उनकी चतुराली नहीं चलेगी, सखियों के सामने सखाओं के सामने उनकी चतुराली नहीं चलेगी, विशेष करके सखियों के ब्रह्मा जी को तो मोहित कर देंगे,
शंकर को मोहित कर
देंगे, देवताओं को भी मोहित कर देंगे और भक्तों को भी मोहित कर देंगे, किंतु गोपियों को मोहित करना खुद ये उनके लिए संभव नहीं, वहीं पर वो हार जाते हैं,
खुद मोहित हो जाते हैं, मोहित कहते
हैं। इसलिए अब हमारे छिपाने की तुम्हारे पास में कोई बात लुकाई ले, प्रेम बोले जान सब का, यदि छिपाओ भी तो आप प्रेम के बल पर उन्हें जान सकते हैं और जान लेते हैं, इसलिए मैं आपके निकट छिप नहीं सका, छिपाने की चेष्टा है। इसलिए भक्त लोग जो होते हैं, यदि साधारण एक भक्त भीतर के हैं, यदि वो अपनी बात को छोड़ करके उनकी बात की रक्षा करते हैं, तो ऐसे प्रेमी भक्तों की किसी बात नहीं, इसलिए वो प्रेम के द्वारा बसी भूत हो सकते हैं। गुप्त राशि ना कही प्रकार हमारे बातों के चेष्टा लोके उपहार, हमारे इस भाव को तुम कहीं भी अलग से प्रकट मत करना, अपने मन में रूप कर रखना, जब तक मैं प्रकट रहूं तभी मत कहना, नहीं तो लोग मुझे पागल कहेंगे और तुम्हें भी पागल कहेंगे। इसे तो प्रकाश पड़ता जो ज्ञाधिकारी भजन के प्रभाव से पीछे इन चीजों को समझेगा। आनी एक बात हूं तुम ही द्वितीय बात, मैं एक पागल और तुम एक पागल और मिल गए। हमारे अद्वैताचार्य जी ने कहा एक पागल बड़ा पागल है महाप्रभु और दूसरा पागल मिल गया निशान, और दो पागल जगाई मधाई मिलकर के ये चार हो गए, और ये चार समस्त मत यहाँ के नवदीप निवासियों को ये चारों सबको पागल बनाएंगे, और नवदीप वासी और सब ये पागलों का समूह मिल करके जगत को पागल बनाएगा। इसलिए तुम सावधान रहो, हरदास ठाकुर को मना कर रहे हैं, तो यही पता है एक मैं पागल, द्वितीय तुम पागल, अतः तुम्हारा अमाय यही सम तुम और माय पागल, बस दोनों ही अपने अपने भाव को रखें, ये तीसरा न समझे। ये विशेष करके हम लोग जो यारुद गोस्वामी का भक्ति का सामने सुनते हैं, उनकी उज्जवल जीवन और उनके ग्रंथों को विशेष करके गोविंद लामी से आती हूँ, यहाँ जब भी पास करें ना तो सब मथुरापुरी के लोग मारने के लिए आएंगे, कहेंगे ये सब भ्रष्ट कर रहे हैं समाज को, जाती नहीं समझ सकेंगे। इसलिए उन चीजों को छिपा करके साधारण रूप में वैधिक भक्ति का प्रचार करें, नाम करो कीर्तन करो ये करो, और ये जो अंतरंगा जो राधांगा भक्ति इसको सबके सामने नहीं कहे, क्योंकि समझ नहीं सकेंगे, धारणा नहीं कर सकेंगे, उनके लिए लोक समाज करो। साधारण ये चीजें हैं, बस वैधिक भक्ति का प्रचार प्रसार, बस ये सदाचार ठीक रखो, भगवान का नाम करो, सत्य सभी हम कृष्ण के दास हैं, बस यही कर सकते। राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं का भी नैतक समाज करिए मान सकती, ये श्रीमद भागवत में भी मना किया गया, इसलिए हम लोग उनके जो उपदेश हैं उनके उपदेशों से पहले साधारण उपदेशों से आरंभ करें, और फिर जब भी हमारा परम सौभाग्य होगा तो रसिक वैष्णव के संग में इन चीजों की उपलब्धि कर सकेंगे, तब तो हम लोग इन चीजों को जाने। आज यही तक रहे, अभी हम लोग दूसरे जगह जाएंगे, कल हमारे चैतन्य महाप्रभु जी का और राधा कृष्ण की मान जन्म परसों है, लोगों को जनाने के लिए हम लोग कल ही नगर संकीर्तन करेंगे, 4 बजे से आरंभ करेंगे, दिन आजकल वर्षा हो रही है, पहले इतनी वर्षा तो कभी और भी दिन देखा, 10-15 वर्षों से 20 वर्षों से नहीं देखा। इस पर विशेष वर्षा हुई और शहर में गंदगी का साम्राज्य फैला। आज भगवान की कृपा से हम लोगों ने सुना कि नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति लोग साफ कुछ रास्ता कर रहे हैं। मैंने सोचा ये भगवान की अशेष कृपा है, कल परसों उनका जन्म होना है, कल हम लोग ठाकुर जी को लेकर के चलेंगे और उसमें सड़े गंद यही है सब में और कीचड़ और नीचर ये सब में ठाकुर को ले जाएंगे। बड़ी भारी गलत फिर हमने सुना कि कुछ लोग करें मेरे अंदर में सब कोई एक मिनट में अंदर में हम लोगों ने विचार किया और मृदंग खोल लेकर के करताल सांसद और सब मठ के ब्रह्मचारी और कुछ जो लोग यहाँ पर साथ थे 20-25 आदमी और आस पास के कुछ लोग मिलकर के कीर्तन करते हुए चल दिया और सत्ता कुछ लोग कर रहे थे और हम लोगों को देख करके वो भी हर गुरु करके नाचने लगे और
भगवान ने हरि हरि
और शोभन देकर के और सब हम लोग ने भर करके जैसे एक ठाकुर की शरण करेंगे और प्रथम का जन्म है ये भगवान का कार्य है समझ करके बस उसमें लग गए। सब लोग जितने थे और बड़े उत्साह से लग सके सर भर भी 8 घंटे में द्वारकाधीश का उत्सव पार कर करके
कल 9 बजे इधर होगा।
कल हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ सबको घर में हुआ किंतु किसी की नजर इस रास्ते तक नहीं पड़ी।